खुदा का शुक्र है कि मेरी बेटी घर लौट आई। खुदा ना करे किसी को अस्पताल के चक्कर लगाने की नौबत आए।
सही कहती हो, खुदा ना करे।
फिर तो हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे।
अस्पताल अगर 5 स्टार भी हो, फिर भी घर जैसा नहीं हो सकता।
अंदाजा लगा उन डॉक्टरों पर क्या गुजरती होगी जो जिंदगी का बड़ा हिस्सा अस्पतालों में गुजारते
हैं। वाकई में डॉक्टरों पर क्या गुजरती होगी?
अच्छी गुजरती होगी।
और कुछ?
जो डॉक्टर नहीं है उनकी भी सुननी पड़ती है।
मम्मी, आप इस बारे में कुछ नहीं कहेंगी?
गौर करने वाली बात यह है कि डॉक्टरों के घर वालों को ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है।
वो भी सब कुछ करते हैं, कुछ तो सिगरेट भी पीते हैं।
सिगरेट कौन पीता है बेटी?
हातिफ अंकल पीते हैं ना।
ओ, हातिफ अंकल डॉक्टर या डॉक्टर घराने से नहीं है, हम इनके बारे में बात कर रहे थे।
मैं कह रहा था कि अच्छा हुआ कि नहीं गया ना।
अगर तुम लोगों के बस में होता तो हंसी खुशी दाखिल हो जाता,
लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर आता और एक सलाम भी कर देता तो उसका बड़प्पन ही होता।
नहीं बेटी, अभी बड़ाई खामोशी इख्तियार करने में ही है, ना कि नसरीन की तरह तंज करने में। मैडम, तुम इस कदर तंज ताना देने से बाज आ जाओ।
जो हुक्म। पापा, अम्मी फरमा बरदार हो गई हैं, देखे हुक्म बजा ला रही हैं।
मैं हमेशा फरमा बरदार थी। शैतान, तुम उस वक्त कहाँ थे जो देखते कि मैं तुम्हारे पापा के पीछे पीछे कहाँ तक जाती हूँ?
आप तो बता दें कि पापा के पीछे कहाँ तक आया करती थी, और वो बातें भी बता दें जो अब तक नहीं
बताई। को परेशान ना करो, तुम्हारी अम्मी सही कह रही हैं। तुम्हारी अम्मी इस कदर ताबे थीं कि मैं भी उनके हुक्म का ताबे हूं।
आप जन मुरीद होने की तौजीह दे रहे हैं। जब अम्मी हुक्म जो कहती है ना, तो ऐसा लगता है हुक्म चला रही है।
मेरे और तुम्हारे पापा के दरमियान रिश्ते का ताल्लुक जो हुक्म कहने या ना कहने से नहीं है।
हाँ बच्चों, तुम्हारी अम्मी ठीक ही कह रही हैं। हम दीवाना वार एक दूसरे को चाहते हैं, वरना कौन अपनी बीवी को कहता है। क्यों बेगम, सही कहा ना?
अम्मी पापा मजाक कर रहे हैं।
मैंने पहले भी कहा है कि जो लोग के नहीं आए हैं, एक बरस हो रहा है कि लेकर नहीं गए।
जी, जी।
मैं जब भी यहाँ आता हूँ हमेशा याद दहानी कराता ही रहता हूँ। जब भी यहाँ आता हूँ ये लोग अपना काम अंजाम देते रहे।
जी।
समझे ना?
जी।
और ये मोहसिन साहब और जनाब मजीद के जिन्हें देख रहे हैं, इनके कद और काठी पे न जाए, ये इतने ही जमीन में गड़े हैं।
शुक्रिया,
शुक्रिया।
होशियार हैं और बड़े मेहनत से अपने सारे काम अंजाम देते हैं। इनके साथ कोई परेशानी नहीं होगी, सारा काम जानते हैं। अच्छा मैं चलता हूँ, मैं बीमार।
जी आप सही कह रहे हैं।
30 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, केमिकल ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। नमी ने मेरे पैरों और कमर पर असर किया है। अब अगर इजाजत दो तो मैं चलता हूँ।
मैं ये कह रहा था जनाब तशक्कुरी, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो कोई बात, अगर भरोसा नहीं है तो भी कोई बात नहीं, मैं कल से नहीं आऊंगा। आखिर क्यों आप इस हालत में दिन में 6 मरतबा चले आते हैं? आप किस बात को लेकर परेशान?
2 साल से तुम्हें तलाश कर रहा हूँ, अब मैं बिल्कुल मुतमईन। समझ लो कि अब तुम्हें मेरी शक्ल भी देखने को नहीं मिलेगी।
आप साहिब इख्तियार
हैं। अगर इजाजत हो तो अब मैं चलता हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है।
जी जरूर,
चलता हूँ।
खुदा आप अभी जाएं और बिल्कुल इत्मीनान रखें, किसी बात की बिल्कुल फिक्र ना करें और अपना ख्याल रखें तशक्कुरी साहब।
या अल्लाह।
जी सलामत रहें आप।
भाई मजीद,
कहिए जनाब।
मुझे ताकीद करने की जरूरत तो है नहीं, इन मशीनों के बारे में जानते हो, ध्यान रखें।
जनाब आपने चाय नहीं पी?
मैं चाय नहीं पीऊंगा, मशीनें बगैर पानी के ना रहें।
आप फिक्र ना करें,
मशीनें
आप मुझ पर इत्मीनान रखें।
और इलेक्ट्रिक का ध्यान रखना, अब तुम लोग बिल्कुल ध्यान रखना, इसकी लाइट सब ध्यान में रहें। अच्छा ये मशीन भी इम्पोर्टेड है, बहुत ही अच्छी मशीन।
आप इत्मीनान रखें, शुक्रिया साहब। आइए चलिए।
इस मशीन के बारे में बताया ना, ये बहुत अच्छी है। इसमें एक कमी थी, मैंने बनवा तो लिया है, अगर इसमें कोई कमी हो तो दोबारा बनवा लेना।
आप बिल्कुल परेशान ना हो।
खुदा हाफिज़।
चुप हो जाओ तुम, क्यों बोल रहे हो?
खुदा हाफिज़।
आपको खुदा के हवाले करता हूँ।
मैं तुम लोगों को खुदा के हवाले करता हूँ।
जी जी जी,
सलामत रहो। खुदा हाफिज़।
जनाब आप फिक्र ना करें।
खुदा हाफिज़। जी जी, मैंने कह दिया ना, आप इत्मीनान रखें। जी जी, इंशाल्लाह सब कुछ वैसे ही होगा। जी ना ना, आप परेशान ना। जी आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ना, आप इत्मीनान रखें मुझ पर। आप बिल्कुल परेशान ना।
आपने कितनी कीमत बताई?
इसकी कीमत है बस 75,000। तुम्हारा
कोई छूट भी?
परफ्यूम का ब्रांड ट्रेडमार्क है।
1,000 भी कोई छूट हुई?
हाँ, इतना ज्यादा फायदा नहीं है, कि मैं हत्ता 5,000 की भी छूट दे सकूं आपको, तो इतना तो मैं नहीं कर पाऊंगी।
कोई नई सील वाली नहीं है?
अभी यही आपके सामने ही तो खुला है।
ठीक है, मैं 3,000 तो नहीं दूंगी।
मुझे इजाजत नहीं, शर्मिंदा हूँ।
मोहतरमा, कोई बात नहीं, मुबारक हो इंशाल्लाह।
शुक्रिया।
कोई बात नहीं,
शुक्रिया।
डॉक्टर साहब, इसका पूरा मुनाफा ही 3,000 था।
कुछ ना होने से तो बेहतर ही है। तुम परेशान मत हो, मैंने जनाब शरीफी से इसकी इजाजत ले ली है, वो राजी हैं।
डॉक्टर साहब, अगर आप मेडिकल स्टोर खोलिए तो घाटे में रहते।
ऐसी बात नहीं है मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं है। जनाब शरीफी राजी हैं, इसलिए मैं यहाँ 8 वर्षों से हूँ। अगर राजी ना होते तो कोई दूसरे मैनेजर रख लेते वो।
माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब, कई डॉक्टर अपने मुनाफे का परसेंटेज भी छोड़ दिया करते हैं।
नहीं छोड़ता हूँ, खुद के लिए इकट्ठा करता हूँ, वारिस को नुकसान पहुँचाता हूँ।
कैसी बातें करते हैं।
शुक्रिया, मैं 1 घंटे बाद वापस आ जाऊंगा।
जाओ देखो, डॉक्टर के हॉस्पिटल जा रहा है।
फासले का ख्याल रहे, फासला रखना मत भूलना।
तुम इत्मीनान रखो।
ज़्यादा इज्जत अफजाई कर रही हो, वरना एक बेरोजगार, बेघर और बेगाड़ी के इंजीनियर की क्या हैसियत?
तुम्हारे वजूद में ऐसा कुछ है जिस पर सैकड़ों मरने चाहिए। घर और गाड़ी क्या चीज है? बस ये कि तुम आजाद नहीं, तुम्हें खुद पर इख्तियार नहीं। तुम अपनी बात को नहीं मनवा सकते, बात को नहीं मनवा सकते।
अब निकल रहे हैं, दरवाजे पर हैं। नहीं नहीं, फिक्रमंद होने की क्या बात है, टिकट भी बाहर के पास है। हाँ,
अगर मुझे भी साथ ले चलते तो कुछ घट जाता क्या?
अगले सफर में इंशाल्लाह। ठीक है, जैसा आप कहें अम्मी।
सलाम बोल दो।
चची जान भी सलाम बोल रही हैं। अरे अम्मी, बच्चे तो नहीं है ना? शनाख्ती कार्ड, वादानामा, निकाहनामा, सभी ऐसी चीजों को रख लिया है जहाँ तक के।
खुदा हाफिज़ी कर लो जल्दी।
ठीक है,
तुम बाप बेटी ने मेरे आंसू निकाल दिए हैं।
ठीक है, खुदा हाफिज।
इंशाल्लाह के सफर अच्छा गुजरे और जरूर अच्छा गुजरेगा, ताकि उसकी याद भी एक यादगार की तरह बाकी रहे।
जी जरूर, कोशिश करेंगे कि वक्त अच्छे से गुजरे, ताकि उम्र भर अच्छी याद बनकर रहे। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, सलामत रहे।
छोड़ो भी, क्या तुम्हारे पापा नहीं है जो इस तरह?
अरे क्या तुम्हारे अंकल नहीं है जो मेरे अंकल से 2 मिनट बात नहीं करने दे रहे हो?
दरवाजे पर इंतजार कर रही है।
खुदा की
लिमोजीन, लिमोजीन।
क्या बंजर कुरुकी से अच्छी है?
अलबत्ता पैसे और कीमत पर मुनसर है।
खरीदो
तो मुझे हॉर्न बजाने।
चलते हैं, खुदा हाफिज।
चलो, मैं भी आ रही हूँ।
चलो बेटा, जल्दी करो, देर हो गई है, जल्दी करो।
खुदा हाफिज। तुम नहीं चलोगे?
सलामत रहो,
मैं जल्दी आ जाऊंगी।
खुदा हाफिज, सफर बखैर हो, सलामत रहो।
जल्दी करो, बाहर बहुत देर हो गई है।
जब पहुंच जाना तो मुझे जल्दी फोन करना, मैं फिक्रमंद रहूंगी।
ठीक है अम्मी जान।
आ जाओ।
इंशाल्लाह तुम लोगों का वक्त अच्छा गुजरे और सलामत।
अब मैं नीचे नहीं आऊंगा, लेकिन गिफ्ट लाना मत भूलना।
ठीक है,
जल्दी आओ, जल्दी
चलते हैं।
खुदा का ख्याल रखना बेटा। हाँ
जी,
गाड़ी धीरे चलाना बेटा।
सलाम मजी साहब, जरा इधर तो आइए, आ जाइए, जरा बताइए क्या रिपोर्ट है।
जनाब सब ठीक है। अच्छा। दो लोग आए थे, कह रहे थे कि आपसे कुछ काम है।
कौन थे, क्या वो कस्टमर थे?
नहीं जनाब, उनका अजीब सा हुलिया था, नहीं मालूम जनाब, या तो खुफिया पुलिस वाले थे या कर्जा वसूलने वाले थे।
तुम ये तो बताओ कि खुफिया पुलिस और कर्जा वसूल करने वाले को कैसे पहचानते हो?
आपको बताऊं जनाब, दोनों ही कम बातें करते हैं, दोनों की भवें तनी रहती हैं, और दोनों ऐसा सलूक करते हैं जैसे कि उन्होंने चोर को ढूंढ लिया हो।
ठीक है, जाओ तुम अपना काम करो।
जी जनाब।
इंस्पेक्टर साहब मैं भी आऊं? आ जाओ तुम भी, आप चलिए मैं आता हूं।
मैं तुमसे पनाह मांगता हूं डॉक्टर, टेलीफोन पर टेलीफोन, पैगाम पर पैगाम, मुझे यहां बुला
लिया। अंदर तो आओ, तुमसे
मुझसे क्या काम है?
आओ
ये तो बताओ
सही
कि क्या काम है जो फोन पर नहीं बता सकते थे। 500 काम पड़े।
गुलगांव जबान वाली चाय साथ में पीनी है।
अच्छा?
फोन पर तो गुलगांव जबान वाली चाय नहीं पी जा सकती ना।
मैं इनका तारुफ कराता हूँ, ये इंस्पेक्टर मोहम्मदी हमारे साथ काम करते
हैं। जनाब बड़ी खुशी हुई मिलकर, मैंने ध्यान नहीं दिया, हम जनाब इंस्पेक्टर साहब को देखकर जरा सा घबरा गए थे। दरअसल
बताओ तुम क्या बात।
इंस्पेक्टर साहब मुझे आपसे एक जरूरी जाती काम था।
कोई बात नहीं,
माफ करें इंस्पेक्टर साहब, हम लोग पुराने दोस्त हैं, आपस में जाती बातें बहुत ज्यादा करते हैं।
हम मुझे इजाजत दें।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहें।
जब पहले किसी को किसी से काम होता था तो वो उसके पास जाया करता।
पहले के जमाने में अगर किसी दोस्त को काम पड़ता था तो हाथ में पानी का गिलास होते हुए भी नीचे रखकर चल पड़ता था कि देखो मेरे दोस्त को क्या काम है। रिफाकत दोस्ती में दिलो जान फिदा कर देते थे और एहसान भी नहीं जताया करते थे। इंस्पेक्टर साहब समझे आप?
आप बताओ मैं क्या करूं, मैं बैठूं या तुम बैठोगे?
नहीं तुम बैठो पहले, मैं जरा गुलगांव जबान वाली चाय उठा लूं, फिर देखते हैं क्या होता है।
चाय तो लाओ, अब तुम सीधे मतलब पर आ जाओ डॉक्टर।
असल बात ये है मेरे दोस्त के, बिल्कुल खुलकर बात करता हूं तुमसे, तुम लोग सब काम छोड़कर मेरे भतीजे यूनुस के पीछे क्यों पड़ गए हो?
बस ये तुम फोन पर नहीं पूछ सकते थे?
देखो फोन भी तो तुम लोगों से अमान में नहीं है भाई साहब।
इत्तफाक से इसके बरखिलाफ फोन पुरम है।
जानता हूं उन लोगों को छोड़कर जो लोगों का तहफ्फुज़ खतरे में डालते हैं, लेकिन हम और तुम दिल की बातें करते हैं आमने सामने एक दूसरे के रूबरू। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब बातें मेरे समझ में आती हैं जनाब। मेरी बेटी का मामला मेरे भाई के बेटे यूनुस से किसी भी हालत में रब्त नहीं रखता है, समझे?
डॉक्टर हादी, तुम्हें बताऊं, तहकीकात तो करनी ही पड़ेगी ना। दूसरी बात ये कि ये एक सामाजिक तहफ्फुज का मामला है, तुम्हारे भतीजे या तुम्हारी बेटी की बात नहीं है। मेरे भाई यूनिवर्सिटी के सामने एक तालिबे इल्म पर तेजाब फेंका गया है, उस पर तेजाब फेंक कर उसे जख्मी किया गया है, समझे तुम? यूनिवर्सिटी पर सवालिया निशान उठ रहे हैं, बेचैनी पाई जाती है। जानते हो क्या मैं इसकी तहकीक ना करूं?
तहकीक क्यों करनी है?
तो
मानता हूं इंस्पेक्टर साहब, लेकिन ये तहकीक लोगों को कामकाज से बाज रखने का बायस न बने। इसकी समाजी पोजीशन को यूं खतरे में नहीं डाला जा सकता।
हमने किसकी समाजी हैसियत को खतरे में डाला, तुम बताओ?
अरे भाई, मेरे भतीजे ने अभी अभी काम करना शुरू किया है। तुम लोग उसके दफ्तर और काम की जगह पर जाकर सैकड़ों परेशानियां खड़ी करते हो। तुम्हें सोचना चाहिए कि कुछ ऐसा करना मुनासिब नहीं है।
तुम जानते हो कि तुम्हारा भतीजा भी इसमें मुलव्विस है?
देखो, मेरी बेटी के मामले में मेरे भतीजे का इसमें बिल्कुल भी हाथ नहीं है।
बात तुम्हारी बेटी और भतीजे की नहीं है।
सुनो, तुम्हारी समाजी मसला समझो तुम। ऐसी ही है, बस इसी तरह की बातें तुम हमेशा ही करते रहे हो।
तुम भी बस मुझ पे एतराज किए जाओ।
नहीं, ऐसी बात नहीं
है। उस टाइम की तरह तुम भी तो ऐसे ही थे।
अब
तुम्हारे भतीजे के बारे में तहकीक ना करूं तो ये ठीक है? क्या तुम यही चाहते हो? तुम हमेशा मेरे काम पर एतराज करते आए हो, यही कहो ना।
शब खैर।
शब खैर बेटा।
अच्छा, अगर आप आलू छील रहे हैं तो अम्मे कहाँ पर हैं?
भाई, औरत और मर्द के दरमियान बराबरी में तुम्हारी अम्मी का काम अंजाम दे रहा हूँ। तुम्हारी अम्मी भी मेरी जगह स्टोर रूम से चावल लाने गई हैं। तुम यहाँ पॉलिश क्यों कर रहे हो?
ये पॉलिश नहीं, क्रीम पॉलिश है। ये भी कोई घर है जिसमें हम रहते हैं? स्टोर रूम भी तहखाने में है, यहाँ लिफ्ट भी नहीं है। कुछ बरसों के बाद अम्मी ये सीढ़ियाँ कैसे चढ़ उतर पाएंगी खुदा ही जानता है।
ऐसा क्या हो गया जो अभी से स्टोर रूम, घर और सीढ़ियों के बारे में सोचने लगे?
अचानक नहीं सोचने लगा, आदमी ऐसी सूरत हाल देखकर तंग आ जाता है।
इंशाल्लाह तुम खुद कोई अच्छी जगह देखकर खरीद लोगे जहाँ ये सब चीजें मौजूद होंगी।
वो तो जरूर करूंगा।
बेटे, कम से कम पेपर वगैरह रख लो, यहाँ गंदगी हो जाएगी।
नहीं बाबा, इसके साथ 10 कदम जमीन पर चलाऊं साफ हो गया है। ये देखिए, दूसरा वाला भी जल्द खरीद लूंगा। यहाँ पर एक लिफ्ट भी तो नहीं है।
20-30 साल पहले ये घर बनाया था तो क्या बेच दें और उसकी जगह आज के हिसाब से 50-60 मीटर का लिफ्ट वाला मकान खरीद लें?
मैंने नहीं कहा कि बेच दें, मैं ये कह रहा हूँ कि किसी अच्छी जगह को किराए पर ले लें। किराए पर रहें लेकिन अच्छी जिंदगी गुजारें, सतही जिंदगी को बेहतर बनाएं।
पैसे कहाँ हैं? अभी कहीं भी जाओगे लेने के लिए तो एडवांस लाखों तुमान तुमसे ले लेंगे, किराया तो अपनी जगह पर है।
आप पैसों की फिक्र ना करें।
बेटे, मैं अपने आजमाए हुए तजुर्बे की बात कर रहा हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह जवान था, कोई भी चीज मुझे काने नहीं करती थी। अचानक देखा कि मेरी सूरत हाल पूरी तरह बदल गई। इस बात का ख्याल रखना कि फनात एक दौलत है, इससे किनारा कशी मत करना।
जो लोग के काने नहीं थे, मेरे ख्याल में अभी उनकी हालत बहुत अच्छी है।
उस घर से घिन आ रही है क्योंकि फरीदून की बदबू सब जगह फैली हुई है।
फरीदून के पास दौलत है, उसके इर्द गिर्द प्रोपेगेंडे की खुशबू इस कदर फैली है कि उसकी गंदगी जाहिर नहीं हो पाती। मुझे भी अच्छी खुशबू से मजा आता।
ये दौलत नहीं है, लोगों का खून है, लोगों की हाय है, इसको बका नहीं है। अच्छे अमीर लोग वो हैं जो अपने बच्चों को ये सिखाएं कि हमारे पास जो भी है वो जायज और हलाल है।
बहस हलाल और हराम पर है। अरे तुम जूतों समेत क्यों आगे बेटे?
नहीं, मैंने बताया कि जूतों के साथ जमीन पर 10 कदम चला हूँ, जूते पाक हैं।
कहाँ से पाक हैं?
मैं ये कह रहा था कि ऐसे घर में चलें जहाँ सीढ़ियों से छुटकारा मिल जाए आपको।
हमेशा तो स्टोर रूम में जाना नहीं होता और अभी मजबूर भी नहीं हुई हूँ।
मैं अजीज दादी के घर जा रहा हूँ। खुदा हाफिज।
रात के खाने पर वहाँ मत रुकना, उनके बुढ़ापे का ख्याल रखना।
आप उन्हें फोन करके बता दें कि वो मेरा ख्याल ना रखें, वहाँ भी जाता हूँ तो यही बातें होती हैं। ये हलाल है ये हराम है, जूते समेत अंदर क्यों आ गए, बगैर जूते के क्यों आ गए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। इस तरह से कोई भी जवानों को नहीं समझ पाएगा। शब्बा खैर,
जा खुदा हाफिज।
हेलो, हाँ कौन?
अरे जूते समेत मत आओ यहाँ,
बाहर बाहर है। सलाम
बोल दे मुर्तजा के लिए, खास कर दुआ करने को।
सलाम बोल दो उसे और दुआ करने को कहो।
सभी सलाम बोल रहे हैं, सभी सलाम बोल रहे हैं बेटी। अच्छा मुर्तजा ठीक है ना? अब सुनो, अपने पापा के लिए भी खास कर दुआ करना। अच्छा ठीक है, एक मिनट रुको रुको जरा। सलामत रहो, ठीक है, खुदा हाफिज बेटा, ध्यान रखो अपना। हाँ अमीर अली, अभी खाना नहीं खाया हो, ब्रश कर रहे हो, जाओ जाओ मेरी तबीयत बिगड़ जाएगी।
मैं ऐसा नहीं सिखा कि कोई बाहर आके ब्रश नहीं कर सकता, ऐसा तो कुछ नहीं कहा।
अरे जाओ वॉश बेसिन में इतना ज्यादा झाग देखकर मेरी तबीयत बिगड़ रही है।
से मेरी तबीयत बिगड़ रही है।
कैसी हरकतें करता है ये बच्चा।
हिफ्जानी सेहत का कोई भी टीचर ऐसी बात नहीं करेगा।
नसीन मैडम, इंशाल्लाह हम लोग भी जियारत को जाएंगे, वहां जाकर शरफ हासिल करेंगे और अपने दिल का बोझ हल्का करेंगे
इंशाल्लाह।
जी बोलिए। सलाम मैडम, जरा एक मिनट रुकिए। उस्ताद।
क्या है
उस्ताद? आपका फोन है।
कौन है मजीद भाई?
आपकी वजीर जंग का फोन है।
तो तुम भी शुरू हो गए, अभी बताता हूँ वजीर जंग कौन है। तुम भी शादी कर लो तो एक बालिश कद भी जमीन में धस जाएगा। हेलो सलाम नसीन मैडम।
हेलो सलाम, कैसे हो, क्या कर रहे थे?
कुछ नहीं, एक वक्त की रोटी के लिए कपड़े धो रहा हूँ।
ओ मुझे तुम पर बहुत तरस आ रहा है हातिफ, क्या साबुन से कपड़े धो रहे हो? अच्छा सुनो, इस बच्ची के जहेज के लिए कुछ सामान रह गया है, खरीदने चलोगे?
अरे नहीं नहीं नहीं, सुनो भाई, मैं लोगों के कपड़े धो रहा हूँ, तुम खुद ही तकलीफ उठा लो और खरीदारी कर लो।
देखो तुम ये बात अच्छी तरह याद रखना, बेटी के जहेज की खरीदारी में तुमने अभी तक मेरी कोई मदद नहीं की है।
सुनिए आप भी ये बात याद रखिएगा कि मैं भी अपनी बेटी के जहेज के लिए लोगों के कपड़े धोने के लिए मजबूर हूं।
हातिफ खान, लोगों के कपड़े धोते वक्त इस बात का पूरा ख्याल रखना कि तुम्हारे हाथों को कोई नुकसान न पहुँचे। कोई हुक्म तो नहीं है?
नहीं कोई गुजारिश नहीं है, तुम्हारा कोई हुक्म हो तो बताओ।
मेरी एक गुजारिश थी, मुझे लगता है कि चलो छोड़ो, तुम्हें बहुत काम होगा, शुक्रिया तुम्हारा।
खुदा हाफिज।
समझ रहा हूँ, खुदा हाफिज खुदा हाफिज, सबको मेरी तरफ से पूछ ले।
फिजियोथेरेपी से इलाज मुकम्मल होता है, फिर ये मुकम्मल करने वाला तिब क्या होता है?
बहरहाल कुछ चीज़ों का इल्म दूसरों को होता है। आरजू, हमारे कुछ प्रोफेसर और डॉक्टर ऐसे भी होते हैं जो खुद को बहुत अक्लमंद और दानिश्वर समझते, वो जरा भी यही नहीं सोचते कि गुज़श्ता सदियों में हकीमों और तबीबों ने बहुत सी चीज़ें कशफ की हैं। अगर बू अली सीना ईरानी ना होते तो सभी डॉक्टर तिब्बे सीना को कबूल करते।
नया मेडिकल तो इसी को कहते हैं ना?
नया मेडिकल नहीं, कहो तासुब रखने वाले पुराने डॉक्टर। लेकिन अच्छी बात यह है कि हालिया डॉक्टरों ने तकमील करने वाले मेडिकल को मान लिया है। यूरोप और अमेरिका में तो इसकी तालीम भी शुरू हो चुकी है। चीनियों का एक्यूपंक्चर इलाज ही देख लो, अभी इसको यूरोपीय मुल्कों ने अपने इलाज के जुमरे में शामिल कर लिया है।
देखो अगर तुम्हारा वो हाथ ठीक हो गया और वो पाँव टेढ़ा ना हुआ तो फिर मैं तुम्हारे इस तकमीली टिप को थोड़ा बहुत मान लूंगी।
मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही होगा।
इलाके में बारिश का माहौल हो रहा है।
चाहो तो अपना बैग मुझे दे दो।
शुक्रिया।
आरजू बहन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया,
ये तो मेरा
मेरे लिए बहुत तकलीफ उठाई। अरे प्रोफेसर खैर अंदेश,
ये कौन है मरियम?
ये वही है जिनके बारे में मैं बता रही थी। ये जनाब ईरान की तिब्बे कदीम के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं। ईरान के तकरीबन सभी प्रोफेसर और डॉक्टर जो आज काम कर रहे हैं इनके शागिर्द रह चुके।
अच्छा,
जरा तेज तर चलो उनके पास चलें। सलाम प्रोफेसर।
वालेकुम सलाम।
सलाम,
सलाम।
कैसी हैं आप?
शुक्रिया, आप ठीक हैं प्रोफेसर साहब?
आप कैसी हैं?
आपका करम है। मेरी सहेली डॉक्टर आरजू सालारी उनमें से एक है जो कि ईरान के तिब्बे कदीम की मुखालिफ है।
दूसरे डॉक्टरों की तरह?
प्रोफेसर साहब बहरहाल आपसे ये उम्मीद नहीं रखी जा सकती क्योंकि आप बहुत ही मसरूफ रहते हैं। फिर भी एक अयादत की हद तक ही सही, मेरी सहेली को जरा तिब्बे सीना के बारे में कुछ वजाहत पेश कर दें।
अभी इतने कम वक्त में? रास्ते में हूँ, मैं कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा हूँ।
प्रोफेसर कुछ जुमले बस, आप यकीन करें ये बहुत ही जहन लड़की है।
जहन लड़की है इसलिए ठीक है, आपकी क्या राय है?
हाँ, जी, सीख लेंगे। शुक्रिया।
वक्त कम है, रुक करते हैं।
तो फिर हम कॉन्फ्रेंस हॉल तक आपके साथ चलते हैं।
ठीक है,
शुक्रिया।
क्योंकि कहा गया है कि आप ज़हीन हैं इसलिए चाहता हूँ कि आपके ज़हन नशीन रहे। तिब्बे कदीम की दो हालतें हैं, एक तो वो कि जिसे लोग देखते हैं, एक फ़र्द की हैसियत से एक ऐसे दुकानदार को फ़र्ज करें कि जिसमें अपनी दुकान में किसी मर्तबान में कुछ जड़ी बूटी रखी हो बेचने के लिए, हो सकता है कि उसकी मालूमात ज़्यादा ना हो। अब एक हकीकी चेहरे को तिब्बे कदीम के उनवान से मुलाहिज़ा करें जो कि एक मौलजाती हैसियत से और तकरीबन 7,000 साल पुरानी रविश रखता है कि जिसे हम एक दूसरे से अलग कर देते हैं। आप मुलाहिज़ा करें कि तिब्बे कदीम एक मसलक और मकतब है, एक बहुत बड़ा मसलक है कई हज़ार साल तारीखी तजुर्बे और दरख्शां रिकॉर्ड के साथ। एक मकतब मसलक यानी वाज़े और मुशख़्स निज़ाम, एक ऐसा निज़ाम जो कि सभी मौलजाती ज़रूरतों के सिलसिले को अपने अंदर लिए हुए है कि जिसमें सभी बीमारियों का इलाज मुमकिन है, उसमें वजूहत पाई जाती हैं, क़वानीन मौजूद हैं। इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ईरान के तिब्बे कदीम का दीगर इबारतों से फ़र्क बिल्कुल वाज़े है। अगर उसकी तारीफ़ एक जिस्म और रूह की जाए तो वो इस पर बिल्कुल फिट बैठेगी, यानी यहाँ पर जिस्म रूह के मद्दे मुकाबल किरदार की मुकम्मल वजाहत होती है। यही तारीफ़ उनके दरमियान पाए जाने वाले रब की अक्कासी करती है और बीमारियों की रोकथाम के लिए भी उसके पास रास्ता है, उसके इलाज का तरीका बयान किया गया है और इससे फायदा उठाने का तरीका सिखाया गया।
प्रोफेसर साहब क्या तिब्बे कदीम बहाल हो गई है?
हाँ बहाल हो गई है, क्या आप नहीं जानती? हाल हाजिर में दुनिया की 30 यूनिवर्सिटियों में मुकम्मल तौर पर तिब्बे कदीम की मुकम्मल डिग्री तक तालीम दी जाती है। मोतबर यूनिवर्सिटियों जैसे कि हार्वर्ड और चीन की शंघाई यूनिवर्सिटी वगैरह में तिब्बे कदीम के जरिए इलाज मुआलजे को ज़रूरी और हतमी अम्र करार दिया गया है। आलमी हिफ्जान सेहत के इदारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तकरीबन 32 चीज़ों का तारुफ कराया है कि इस 32 या 39 में से 2-3 को छोड़ करके जिसमें हिंदुस्तानी और चीनी तिब को जगह दी गई है, बाकी सभी का ताल्लुक ईरान के तिब्बे कदीम से है। क्या ये बात आप जानती थी?
क्या आप उनके बारे में बता सकते हैं?
इन यूनिवर्सिटियों में मुख्तलिफ मौजूद जैसे कि फिजियोथेरेपी, हेडियोथेरेपी और कार्डियोथेरेपी वगैरह हैं।
वही खून निकालने वाला तरीका?
हाँ वही खून निकालने वाला इल्मी मौजूद दर्स में शामिल है जो कि रस्मी तौर पर पढ़ाया जाता है।
माफ़ करें प्रोफेसर साहब, अगर ये मौजू इतना ज़रूरी है तो हमारे मुल्क में क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता? इलाज में इससे फायदा क्यों नहीं उठाया जाता? सभी डॉक्टर और प्रोफेसर इसके खिलाफ क्यों हैं?
उसका ताल्लुक बहुत पुरानी और अदवार साबिका की तारीख से है। ये एक बहुत पुरानी साम्राज्य साजिश का हिस्सा है कि जिसकी दास्तान बहुत लंबी है। ये 1600 और 1601 बरसों के बाद की बात है जब शुमाल मशरक हिंद की कंपनी का क़याम अमल में आया। दिलचस्प बात यह थी कि ये कंपनी देखने में तो इक्तसादी थी लेकिन उसके मुलाजमीन डॉक्टर थे। उनकी कोशिश ये थी कि ईरान से तिब्बे कदीम का खात्मा कर दें, लेकिन उस दौर के ईरानी लोगों ने रिवायती तिब से शदीद लगाव के सबब इस बात की कतई इजाज़त नहीं दी कि ईरानी तिब का इस मुल्क से यकसर तौर पर खात्मा हो जाए। उस जमाने में लोगों का ये मानना था कि अगर किसी बीमारी का इलाज ईरानी डॉक्टरों से नहीं हुआ तो दुनिया में कहीं भी इसका इलाज नहीं हो सकता है। तिब्बे कदीम का तारीख निगाह जो कि एक अंग्रेज है कहता है, हमने ईरान में सफवी दौर में कोशिश की कि तिब्बे कदीम का खात्मा कर दें लेकिन उस वक्त हम कामयाब नहीं हुए। उस जमाने के लोग तिब को अपने दीन की तरह मानते थे, लेकिन बाद में काजारिया दौर में 1914 में गैर मुल्की या ईरानी यूनिवर्सिटियों के जरिए डिप्लोमा की ज़रूरत पर मबनी कानून बनाए जाने के बाद से ईरान में तिब्बे कदीम के खात्मे के लिए ताबूत में आखिरी कील ठोक दी गई।
यानी ये वही बू अली सीना का
जी
तिब
हाँ,
है?
वही तिब्बू अली सीना। जबकि दुनिया के लोग और मगरबी लोग ये कोशिश कर रहे थे कि मशरकी तिब का
مطالعہ کر کے اپنی طب کے نقائص کو دور کریں۔ ایران نے اپنی طب کی بساط کو سمیٹ لیا۔ اس قانون کے بنائے جانے کے بعد کسی بھی استاد کو پڑھانے کی تاب و توانائی نہ رہی، کیونکہ ان کے پاس یونیورسٹی کی کوئی ڈگری نہیں تھی۔ اس کے علاوہ پولیس اور حکومتی اہلکار ایسے طبیبوں اور حکیموں کی گرفتاری کی کوشش اور فراق میں تھے۔ ایران کے طب قدیم کے ماہر حاذق طبیب مانے جاتے تھے۔ جس طرح سے طب قدیم کا مکمل طور پر میدان عمل سے صفایا ہو گیا، کیا تم یہاں پر اس کے خاتمے کے کچھ اثرات اور نشانیاں دیکھ رہی ہو؟
یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں پایا جاتا کہ طب قدیم کہیں بھی جواب دینے سے قاصر ہو؟
بالکل یہی بات ہے۔ آپ یہاں تک کاغذ کا ایک ایسا ٹکڑا بھی نہیں پائیں گے کہ جس کی ورق گردانی کی گئی ہو۔ مثال کے طور پر اس کا علاج مفید واقع نہ ہوا ہو، یا جیسے کہ معدے کی گیس کے لیے کوئی دوا تجویز ہو اور وہ مفید نہ ہو، اور مفید نہ ہونے کے سبب اس کو روک دیا گیا ہو۔ اسی طرح ایسا نہیں ہے کہ جیسے کہ گلگاؤ زبان سکون قلب کے لیے مفید ہو لیکن الٹا اثر دکھانے کے باعث ختم ہو جائے۔ اس بابت کوئی بھی علمی رپورٹ نہیں ہے۔ یہ سب کارروائی اس کے خاتمے کے لیے سیاسی منصوبہ بندی تھی، کوئی علمی کام نہیں ہوتا تھا۔ مجھے امید ہے کہ یہ بحث مکمل ہوگی انشاءاللہ، اور آپ سے دفتر میں ملاقات کروں گا اور آپ کو کتابیں بھی دوں گا۔ ابھی بارش ہونے والی ہے، پھر ملاقات کروں گا۔
آپ نے بہت مہربانی کی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت سے سیکھنے کو ملا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔
آج میں ایک نمائش گاہ میں تھا۔
کیسی نمائش کا؟
ارے کار کی نمائش۔
کس لیے؟
اس لیے کہ مجھے گاڑی خریدنی ہے۔
اچھا،
کار کا کیا کرو گے؟
چلانا چاہتا ہے اور کیا۔
کار چاہیے تو لو یہ سمند لے کر چلاؤ۔
نہیں، مجھے خود اپنے لیے ایک گاڑی تو چاہیے نا۔
کروک بینز خرید لو۔
مجھے کروک بینز پسند نہیں ہے، تم ایسے کیوں بیٹھے ہوئے؟
امی نے کہا کہ اگر کھور کے دیکھو گے تو کھیلنے نہیں دوں گی۔ کیا تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں؟
بیٹے تم انسٹالمنٹ اور قرض کے چکر میں نہ پڑو۔
بیٹے گاڑی کے بجائے اپنے لیے گھر اور زندگی کے بارے میں سوچو۔
پاپا صحیح کہہ رہے ہیں، پرانے زمانے کے لوگوں کا کہنا ہے گاڑی یعنی پیسے کی بربادی۔
آپ جو پرانے زمانے کا بول رہی ہیں، اس وقت گاڑی کہاں تھی؟
مجھے دو لفظ بات کرنے دو گے؟
گھر کی میرے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ میں نے بتایا نا کہ پروجیکٹ پورا ہونے کے بعد ایک فلیٹ مجھے مل جائے گا۔
دنیا کے جھوٹے وعدوں پر بھروسہ نہ کرو، اپنا کام کرو تم۔ ارے بھائی، کون ہے جو یوں ہی بلا وجہ اپنا ایک فلیٹ کسی کے نام کر دے؟
لیکن تم نے اس کا وعدہ کیا ہے، ہے نا بیٹے؟
یوں ہی بلا وجہ کیا ہے؟ میں وہاں پر محنت مزدوری کر رہا ہوں۔ بیچنے کا پرسنٹیج، فلیٹوں کی تکمیل، ان سب کا پیسہ ایک فلیٹ کی قیمت سے زیادہ یوگا کم نہیں۔ دیکھو تو کیا حالت ہو گئی۔
حاتف، یہ تولیہ اپنے سر پر لپیٹ لو۔
ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔
میں تمہارے لیے سوپ بنا رہی ہوں، پیو گے تو جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے۔
آپ لوگ پاپا کو دھیرے دھیرے بیمار کرتے جا رہے ہیں، تھوڑا سینے میں درد تھا بس۔
یونس بیٹا، یہ لانڈری میں دروازے تک یوں ہی چلے جاتے ہیں، برف کا ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، یہ مصیبتیں خود ہی تو بلاتے ہیں۔
بیٹے تم گاڑی لے کر چلے جاؤ، کل دکان پر آ جانا، ساتھ میں ایئرپورٹ چلیں گے۔
آپ ایسی حالت میں پیدل جائیں گے کیا؟
یقین مانو مجھے کیا ہوا ہے، میں نے کہا نا سینے پر تھوڑا کف جم گیا۔ کہتے ہیں نا اچھی بیوی کا ہونا سر درد ہی ہے۔
پاپا بیوی بچوں کے لحاظ سے آپ نصیب والے ہیں۔
ہاں یہ تو ہے۔
ہاں زبان کے لحاظ سے تمہارا بھی نصیب اچھا تھا جو یہ بچہ بلبل زبان ہو گیا۔
ارے بھائی نسرین، یہ پیارا بچہ تمہاری تعریف کر رہا ہے۔
جانتی ہوں، اس کا تعریف کرنا بھی اس کے پاپا کی تعریف کی طرح وقتیہ ہے۔
معافی چاہتا ہوں، آپ کا نصیب بیوی سے نہیں بلکہ بیٹے سے اچھا تھا۔
مطلب یہ کہ یہ سب باتیں تمہاری عمر میں ذرا مناسب نہیں۔ میں جا رہا ہوں، خدا حافظ۔
خدا حافظ بیٹا۔
بتایا نہیں کون سی گاڑی خریدنا چاہتے ہو؟
بتاؤں گا تمہیں، جاؤ چھوڑو مجھے۔ ارے
نہیں بتاؤ،
چھوڑو مجھے۔ ٹھیک ہے، دروازہ بند کرو۔ ٹھیک ہے، دروازہ بند کرو۔
میں کہہ رہا تھا نسرین،
ہاں کیا ہے؟
اس یونس کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات تو ہے۔
کل شام کو یہ جناب ہادی بھائی کے گھر گئے تھے، اپنے ساتھ گلدستہ بھی لے گئے تھے۔
تمہیں کیسے پتا؟
بہار نے بتایا۔
اس بہار کے نیوز چینل کا اینٹینا سفر میں بھی کام کرتا ہے، نیوز ایجنسی بہار ایکسپریس۔
یونس نے مرتضیٰ کو بتایا، مرتضیٰ نے بہار کو، اور اس نے مجھے بتایا۔
یونس سے کہو کہ پھر جائے۔ ایسا کرو، یونس سے کہو کہ خود بھی جائے اور مریم کو امی کے گھر لے جائے، اس کے بعد جائیں گے ایئرپورٹ۔
میں اسے نہیں کہوں گی۔
کیوں؟
کیونکہ میں نے اب توبہ کر لی ہے کہ ایسی خبریں تمہیں نہیں بتاؤں گی۔
ارے ذرا سنو تو۔
کیا ہے؟
تم ایسا کیوں کرو گی؟
میرے پیٹ میں درد ہو گیا۔
کیوں؟
ہنسی سے۔
मेरे लिए पर्चे और बारीक पेंसिल का और खिलौना खरीदेगा।
دارم حس میکنم نورو که همزاد نفس هامه، همزاد نفس هامه. برای من سرآغازی به معنای سرانجامه، معنای سرانجامه. از این خواب زمستونی شبیه قنچه پا میشم، دلم گرمه که با خورشید دوباره هم صدا میشم. دارم حس میکنم نورو که همزاد نفس هامه، همزاد نفس هامه. برای من سرآغازی به معنای